हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वो लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, छोड़े जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उस जिन्नात के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। और जैसे ही अमन वहाँ आया, अमन ने उस जिन को पीछे से पुकारा था, और जैसे ही उस जिन ने रात में उस वक्त अपने कमरे में किसी की आवाज़ सुनी, उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। और अचानक से जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा और अमन को अपने सामने देखा, तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। तब तक अमन ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे लड़की के नग्न बदन को कपड़ों से ढंक दिया था और एक फूंक उस लड़की की ओर मारी थी, जिससे वो लड़की बेहोश हो गई थी। और जब तक वो होश में आने वाली थी, तब वो सब कुछ भूल चुकी होगी। अमन ने कुछ ऐसा जादू उसे लड़की के ऊपर फूंक दिया था, और जैसे ही अमन ने ये देखा कि वो लड़की बेहोश हो गई है, वो जिन्नात उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया है। तब अमन ने उस सफ़ेद जिन को कॉलर पर से पकड़ा था और उसे अपने साथ लेकर गायब हो चुका था। और लेकिन जाने से पहले उस लड़की को पहले जैसा बिल्कुल सिद्धार्थ किया तो उसके दिलो दिमाग से बिठाकर वो अपने जिन्नात को साथ लेकर जा चुका था। और तब वो जिन्नात अमन के सामने हाथ हाथ बंधे खड़ा हुआ था, क्योंकि अमन के सामने बोलने की उसकी कोई हिम्मत नहीं थी। तब अमन ने उस जिन की ओर देखते हुए कहा था, आखिरकार तुमने ऐसी घटिया हरकत की क्यों? तुम अच्छी तरह से जानते हो जिन्नातों का ये सबसे बड़ा गुनाह है और तुम्हें इसकी क्या सज़ा मिल सकती है। तभी अचानक से वो जिन खून के आंसू रोने लगा था और कहने लगा था, मुझे माफ़ कर दीजिए जिन महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। और मैं पिछले 6 महीने से मैं उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे चुका हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करिएगा। अमन को देखते ही उसने अपना पूरी तरह से रंग बदल लिया था और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा था। तब अमन जानना चाहता था कि आखिरकार इसने गलती की क्या थी, और अगर किसी लड़की के साथ ये रिश्ता बन रहा था तो ये गुनाह था, लेकिन क्या ये वही जिन था जिसके लिए परमेश्वर ने उसे आदेश दिया था? तो ये सोचते हुए अमन ने अचानक उस जिन के ऊपर एक मंत्र पढ़कर फूंका था, जिससे वो जिन एकदम शांत और चुपचाप एक पत्थर के जैसा हो गया था। तब अमन ने आगे बढ़कर उसकी दाईं आंख में उसका हाथ पकड़कर देखना शुरू कर दिया था, और जैसे ही अमन उसके यादों में 6 महीने पहले गया तो उसके होश उड़ गए थे। अमन ने देखा कि वो जिन खूबसूरत नौजवान का रूप बदलकर इंसानों की दुनिया में रह रहा था, और उसके अंदर इतना आकर्षण था कि कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता था। आखिरकार वो एक जिन था तो उसमें आकर्षण काफ़ी सारा था। तो वो जिन खूबसूरत लड़कियों के आसपास रहा करता था, और जब भी उसे कोई खूबसूरत लड़की दिखती तो उसी इंसान के रूप में वो उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया करता था और फिर अपने अगले शिकार की ओर चला जाया करता था। तो इस तरह से उसने शहर की कितनी ही खूबसूरत लड़कियों को अपना निशाना बनाया था, लेकिन जब उस जिन की नज़र ज़ोया पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया था। ज़ोया बड़ी ही खूबसूरत थी। पहले तो वो सिर्फ एक दिन के लिए ही लड़कियों के साथ रिश्ते बनाकर उन्हें छोड़ दिया करता था, लेकिन ज़ोया के मामले में उसने ऐसा नहीं किया था। उसने ज़ोया को उसी के घर में, उसी के कमरे में कैद कर लिया था, और जब भी ज़ोया अपने कमरे से बाहर जाती थी वो उसके सर पर हावी हो जाया करता था और लोगों को नुकसान पहुँचाया करता था। ज़ोया ने कितनी ही बार अपने ही हाथों से अपने माँ बाप की पिटाई तक कर दी थी और अपने भाइयों की जान लेने की कोशिश की थी, क्योंकि उस वक्त वो जिन उसके अंदर रहा करता था और दिन रात उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करने लगा था। ज़ोया के माँ बाप ने उसके भूत प्रेत को दिखाने के लिए काफ़ी सारे मल्लाह मौलवी से मुलाकात की थी, लेकिन कोई भी ज़ोया का इलाज नहीं कर पाया था। इतना ही नहीं, जब भी कोई मल्लाह मौलवी ज़ोया का इलाज करने के लिए आया करता था, तब वो जिन उसे और दीन से भी ज़्यादा तकलीफ दिया करता था। तब जब एक दिन ज़ोया ने अपने भाइयों की जान लेने की कोशिश की, तब उसके माँ बाप ने हार कर उसे एक कमरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था, और उसे खाना पीना भी अब दरवाजे के नीचे से दिया जाने लगा था, क्योंकि अब वो उसे खुला नहीं छोड़ सकते थे, और क्योंकि ज़ोया उनकी इकलौती बेटी थी तो वो उसे इस तरह से मार भी नहीं सकते थे और कहीं बाहर पागलखाने या कहीं और भी नहीं छोड़ सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने उसे अपने ही घर में कैद कर लिया था। जोया दिन रात रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन उस जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब 24 घंटे उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करता रहता था। जैसे ही उस जिन ने ये सुना, उसने तुरंत अमन जिन महाराज के पैर पकड़ लिए थे और कहीं ना कहीं उसने इस बात का कड़ा इरादा कर लिया था कि वो अब उस लड़की के सभी जख्मों को दर्द को दूर करके रहेगा। उसे आज भी वो दिन याद था जब वो पहली बार उसने उस लड़की को देखा था। वो लड़की हर रोज की तरह अपने घर का कामकाज करने के बाद अपनी छत पर बाल सुखाने के लिए गई थी और वहीं उसी वक्त वो सफ़ेद जिन आसमानों की सैर कर रहा था और जैसे ही उसने उस लड़की के खूबसूरत घने लंबे बाल देखे और उसके खूबसूरत उजला हुआ जिस्म देखा तो वो उसी वक्त उसकी खूबसूरती में गिरफ्तार हो गया था। वो चाहता तो उसे अगवा भी कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था क्योंकि वो जिन महाराज की नज़रों में नहीं आना चाहता था। वेल, उसी पल जोया की खूबसूरती को देखने के बाद उसने डिसीजन ले लिया था कि वो इस लड़की को पूरी तरह से पाकर रहेगा और इसीलिए उसने उस लड़की को अपना बनाने के लिए सारे रास्ते अपना लिए थे। इतना ही नहीं, उस जिन ने इस लड़की के घर वालों को इतना मजबूर कर दिया था कि खुद उसके घर वालों ने जोया को 6 महीना से कमरे में कैद करके रखा हुआ था। लेकिन अब जो कि जिन महाराज ने उसे पकड़ लिया था तो उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे हर हाल में उस लड़की के जख्मों को भरना ही था और साथ ही साथ उसने जो 6 महीने से उस लड़की के साथ बर्ताव किया था वो सब भी उसे ठीक करना था। तो इसीलिए वो जिन महाराज से आज्ञा लेने के बाद सीधा जोया के पास जा पहुंचा था। उसने वहां जाकर जोया की ओर देखना शुरू कर दिया था और वाकई उसे आज अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था क्योंकि जोया की खूबसूरती जहां उसके जिस्म के हर एक हिस्से से टपका करती थी वहां अब ऐसा कुछ नहीं था। उसकी खूबसूरती पूरी तरह से ढल चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले काले घेरे आ गए थे। उसका जिस्म सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा था। उसके खूबसूरत लंबे घने बाल एकदम बेजान हो गए थे। इतना ही नहीं, उसकी जो उजली हुई रंगत थी वो पूरी तरह से दब चुकी थी। जैसे ही उस सफ़ेद जिन ने जोया के जिस्म पर गौर किया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसकी आंखों से खून के आंसू निकलना शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी ओर तारा परी और बाकी की को परियों ने साथ मिलकर बड़ी ही मेहनत से नृत्य कर रही थीं और उन सब परियों का नृत्य करते हुए 3 दिन से ज़्यादा हो चुके थे लेकिन अभी तक कुलगुरु प्रसन्न नहीं हुए थे। ये देखकर रानी माँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित थीं क्योंकि जब भी सारी परियां मन से नृत्य किया करती थीं तब कुलगुरु 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनके सामने आ जाया करते थे लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं रानी माँ थोड़ा सा परेशान थीं लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थीं इसकी सबसे ज़्यादा समय 7वां दिन होता है। 7 दिन से ज़्यादा वो लोग नृत्य नहीं कर सकते थे। नृत्य करते करते उन लोगों के पैरों से खून तक निकलना शुरू हो गया था। जब भी जिस परी के पैरों से खून निकलता वो तुरंत एक गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में बदल जाता था। इतना ही नहीं, धीरे धीरे सभी परियों के पैरों से खून निकलना शुरू हो गए थे और देखते ही देखते पूरा का पूरा कक्ष फूलों से भर उठा था। रानी माँ ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थीं और खुद भी कुलगुरु को बुलाने के लिए कड़े मंत्रों का उच्चारण करने लगी थीं और जल्दी ही देखते वहाँ की पृथ्वी में अजीब सा कंपन होना शुरू हो गया था। वहीं दूसरी ओर उस सफ़ेद जिन कुछ देर अपने किए हुए कृत्य को देखता रहा था और फिर उसने आगे बढ़कर जल्दी से सबसे पहले जोया को कपड़े पहना दिए थे। कपड़े पहनने के बाद उसने उसके हाथ पैरों को खोल दिया था और उसके सामने एक इंसान रूप में बैठकर उसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा था। जोया डरी सहमी सी उसकी एक एक बात को सुन रही थी लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उस जिन की किसी भी बातों का उसे कोई हाँ या ना में जवाब दे सके। तब उस जिन ने आगे बढ़कर जोया के बालों को छू लिया था और जैसे ही उसने जोया के बालों को छुआ उसके बाल पहले के जितने खूबसूरत लंबे और घने हो गए थे। जोया ये देखकर काफी हैरान हो गई थी। तभी उस जिन ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करके जोया के चेहरे को छुआ था और देखते ही देखते जोया की पहले वाली खूबसूरती लौट आई थी और उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ था। उसके अंदर जो उसने इतने दिनों से कुछ भी खाया जोया का जिस्म पहले के जैसा खूबसूरत हो उठा था। जोया ये देखकर काफ़ी हैरान थी और फिर उस जिन की ओर देखकर कहने लगी थी, आखिरकार क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ मेरे साथ? क्या हुआ, अब मेरे जिस्म में पहले जैसी खूबसूरती नहीं रही तो इसीलिए अपनी शक्ति से मेरी खूबसूरती बढ़ा रहे हो ताकि एक बार फिर मेरे जिस्म को रौंदा सको? जैसे ही जोया ने ये कहा वो सफ़ेद जिन उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह से रोने लगा था और कहने लगा था, मुझे माफ़ कर दो जोया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कब इतना बड़ा हैवान बन बैठा, कब मैं इतना ज़्यादा बड़ा गुनाह कर बैठा, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से जोया से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा था। तब जोया ने बिल्कुल सपाट लहजे में उसे कहा था, मेरे माफ करने या ना करने से क्या होता है? तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। 6 महीना से मैं इस कमरे में कैद हूँ। मेरे घर वाले मुझे जानवरों की तरह खाना देते हैं। कोई मुझसे मिलना तक पसंद नहीं करता है। क्या जोया उस जिन को माफ कर पाएगी? क्या तारा परी के कुलगुरु उसके नित्य से प्रसन्न हो पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।